स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने की बहुत सी बातों पर बहुत प्रकार से विचार किया है और अंततः हमने अपने जीवन में झांक करके देखा है कि वास्तव में मैं जिस दिन चाहूं उस दिन स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता हूं, उस दिन मैं स्वाधीन हो सकता हूं, या कि मैं अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता हूं। ये मेरी अपनी अज्ञानता है, ये मेरी अपनी कमजोरी है कि मैं अपने जीवन में परतंत्रता में ही सुख मान रहा हूं। इंद्री और मन और इन इंद्रियों और मन के विषय ये मेरी अपनी परतंत्रता के कारण नहीं है, मेरी अज्ञानता मेरी परतंत्रता का कारण है। इंद्री के विषय और मन के विषय मुझे जबरदस्ती पराधीन नहीं बनाते हैं, मेरी उन इंद्री के विषयों में और मन के विषयों में जो आसक्ति है और वो आसक्ति मेरी अज्ञानता की वजह से है। यदि मैं अपने दृष्टि को निर्मल कर लूं, अगर मैं अपनी इस अज्ञानता को दूर कर दूं, तो धीरे धीरे आसक्ति कम होने पर मैं अपने उस स्वाधीन और स्वतंत्र स्वभाव को अनुभव भी कर सकता हूं। बंधन मेरा स्वभाव नहीं है, मुक्ति मेरा स्वभाव है। हम सब जब कभी थोड़ा बहुत किसी बंधन से मुक्त होते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। और यदि हम संसार के और कर्मों के, शरीर और मन के इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाएं, तब वो स्थिति हमारी कैसी होगी? वो अत्यंत आनंद की स्थिति होगी। हमने पिछले दिनों इसे ही अध्यात्म माना है और वास्तव में अध्यात्म का प्रयोजन यही है कि हम अपने जीवन में उस मुक्ति का स्वाद ले सकें। मेरा जीवन मुक्त हो सकता है इस बात का श्रद्धान कर सकें, और इतना ही नहीं, हम उस मुक्ति के लिए, बंधन से मुक्ति के लिए कोई उपाय अपने जीवन में कर सकें। यही प्रयोजन हमारे जीवन में अध्यात्म को, धर्म और दर्शन को जानने का है। एक और बात हमारे मन में आ सकती है कि जिस व्यक्ति के ज्यादा ज्ञान का शोपसम नहीं है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या अपने जीवन में ज्ञान हासिल किए बिना मुक्ति को प्राप्त हो सकता है? तो शब्द ज्ञान और आत्मज्ञान, इन दोनों में बहुत फर्क है। हम लोग सोचते हैं कि जिसको शब्द ज्ञान होगा वो मुक्त हो जाएगा। यहां ज्ञान के मायने शब्द ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है कि आपको कितनी भाषाएं आती हैं, या कि आपको कितनी पोथियां कंठस्थ हैं। यहां ज्ञान के मायने ये नहीं है और अज्ञान के मायने ये भी नहीं है कि आप कोई भाषा नहीं जानते हैं या कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए अज्ञानी हैं, ये अर्थ नहीं है। यहां तो भौतिक ज्ञान का नाम अज्ञान है और आत्मज्ञान का नाम ज्ञान है। इसलिए हमें इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं या कि हमारे पास शब्द ज्ञान कम है। जिस व्यक्ति के पास शब्द ज्ञान कम है लेकिन जिसे ये समझ है, जिसे ये श्रद्धान है कि मेरी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में मेरे प्रयत्नों के द्वारा पहुंच सकती है, शरीर से वो भिन्न है, अगर इतना भी ज्ञान है तो वो ज्ञान या कि वो श्रद्धान हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है। ऐसे लोगों के लिए भक्ति रखी हुई है। जिनके पास शब्द ज्ञान नहीं है वे भी भक्ति के द्वारा अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं, लेकिन भक्ति ठीक ठीक अर्थों में भक्ति होना चाहिए, एक डिवोशनल एटीट्यूड, एक भावपूर्ण प्रेयरफुल हमारी अपनी हृदय की अवस्था, वो है भक्ति। प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ लेना या सकल गे गायक की विनती पढ़ लेना, उसको कंठस्थ कर लेना, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना, ये भक्ति का बाह्य रूप है। लेकिन अंतरंग में जब तक अपनी उस भीतरी भगवत्ता का श्रद्धा नहीं होगा, जब तक भगवान ने जिस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लिया है उसका अंतरंग में एहसास नहीं होगा, तब तक भक्ति से मुक्ति नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, भक्ति मुक्ति का कारण तो है लेकिन भक्ति का स्वरूप क्या है ये भी हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। हमारे भीतर भी भगवान बनने की सामर्थ्य है, ये विश्वास अगर है, ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त है, और दूसरी चीज भगवान की परमात्मा अवस्था वैसी मैं प्राप्त कर सकता हूं, अगर ऐसा एहसास है तब हमारी द्वारा की गई भक्ति हमें मुक्ति में भी कारण बन सकती है। भक्त यानी टू यूनाइट और विभक्त यानी टू डिवाइड। अपन कहते हैं ना, विभक्त हो गए, विभाजित हो गए, बट गए, अलग अलग हो गए, और भक्त हो गए यानी जुड़ गए। अब कुछ देर तक तो दो रहेंगे फिर एक ही हो जाएंगे। भक्ति शुरू होती है आराध्य और आराधक, श्रद्धालु और श्रद्धे, इन दोनों के बीच शुरू होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे भक्ति की प्रगाढ़ता होती चली जाती है वैसे वैसे वहां सिर्फ एक ही शेष रह जाता है और वो है हमारी अपनी निर्मल आत्मा की अवस्था। जैसी भगवान की निर्मल और स्वतंत्र अवस्था है वैसी ही मेरी भी है, ऐसा एहसास होना शुरू हो जाए तो समझना कि अब भक्ति शुरू हो गई। अभी हाथ जुड़ते हैं, माथा झुकता है, वाणी से जो कुछ भी याद है वो सब आ जाता है, इतना तक तो अपन ने कर लिया, ये तो सब कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद की चीज करने की है कि जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा है, इस बात का एहसास होना चाहिए और इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मुझे भी वैसा ही स्वरूप प्राप्त हो सकता है। आत्मविश्वास और परमात्म अवस्था पर विश्वास और इसके साथ साथ अपनी भीतरी भगवत्ता का एहसास, ये इतनी सारी चीजें अगर हमारे भीतर भक्ति के दौरान इस बाह्य भक्ति के दौरान जुड़ जावे तब वो भक्ति मुक्ति का कारण बन सकती है। भक्ति भी आध्यात्मिक चेतना से ही हो सकती है। आध्यात्मिक चेतना के मायने क्या, अपन ने दो दिन तीन दिन पहले समझ लिया कि हमारी चेतना तब अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूती है जब हम अपने उस आत्मस्वरूप पर विश्वास करते हैं और इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए लालायित होते हैं। तब समझना कि अब हमारी चेतना आध्यात्मिक चेतना हो गई। ऐसी आध्यात्मिक चेतना से श्रद्धा से भर करके बहुत भावपूर्ण होकर के जब भक्ति की जाती है, अपन तो दोहरा लेते हैं कई बार, तो मुझे भी लगने लगता है जब दर्शन के लिए आता हूं तो इस वेदी पर दर्शन करना है, फिर क्रम क्रम से सारी वेदियों पर दर्शन करना और फिर बस काम पूरा हो गया दर्शन का। एक जैसे बहुत फॉर्मल सी प्रक्रिया है, एक बहुत ट्रेडिशनल, एक बंधा बंधाया सा एक ढंग है कि इतने बार उठना है, इतने बार हाथ जोड़ना है, इतने बार माथा झुकाना है, ये बिल्कुल फिक्स्ड उसकी भक्ति है तो ये करनी है। कभी अपने मन से भगवान के बारे में कुछ गुणगान उमड़ता है? वो जो प्रभुपतित पावन रटी हुई है वो तो उमड़ती है, लेकिन कभी उसके अलावा दो चार शब्द अपने मुंह से निकलते हैं कि ऐसे हैं भगवान, ऐसा है भगवान का स्वरूप? ऐसा अपने अंतरंग से कभी नहीं आता, ना ही अपना मन कभी गदगद हो पाता है, ना कभी अपन रोमांचित हो पाते हैं। भक्ति के लिए ये सारी चीजें बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि भक्ति एक तरह की अनुभूति है, भगवत्ता की अनुभूति, भगवान सामने हो और मुझे मूर्ति में भगवान दिखाई पड़े और मेरे अंदर भी ठीक ऐसी ही भगवान बनने की शक्ति छिपी हुई है, ये सारी चीजें मेरे मन में कैसा आनंद देंगी उन क्षणों में। अरे भाई, जिस चीज को हमें प्राप्त करना है, जब बहुत दिन से जिस चीज को पाने की लालसा थी, वो चीज अगर एक झलक अपन को दिखाई पड़ जाए तो कितना आनंद होता है। ऐसा ही अगर हमारे मन में अपनी मुक्ति का, अपने परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का कोई भाव है, तो जिन्होंने अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया है उनको देखते ही साथ हमारे मन में आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन उन क्षणों में अपन को दिखता क्या है, अपन को सारा कुछ बाहरी दिखता है। भक्ति दृश्य जगत से हटकर अदृश्य जगत को जो दिखाई नहीं पड़ता उसे देखने की प्रेरणा देती है। दिखाई पड़ती है सोने चांदी और पत्थर की प्रतिमा, लेकिन भक्ति दिखा देती है उसमें बैठे हुए भगवान के स्वरूप को। बस इतना काम भक्ति का है। ये दो आंखें वो काम नहीं कर पाती अगर हमारे भीतर भक्ति है तो वो काम भक्ति कर देगी। एक उदाहरण है इसका, शायद समझ में आए उदाहरण से। क्या हुआ, एक पुजारी जी मंदिर में नियुक्त किए गए। सस्ते का जमाना था तो 16 पैसे या 16 आने महीने भर के मिलेंगे और पुजारी जी को पूजा का काम सौंप दिया गया। पुजारी जी ने पूजा भी शुरू कर दी और दो चार दिन हुए और हल्ला शुरू हो गया। हर आदमी टोकने लगा, जी कैसे पुजारी रखे भाई, अरे हटाओ इनको। तो जो कमेटी थी उसके पास तक खबर पहुंची, उन्होंने कहा भाई पहले देखेंगे बात क्या है, समझेंगे। तो दो चार लोगों ने मंदिर में छुप करके और देखा कि क्या करते हैं पुजारी जी सुबह से, तो जैसा बताया गया था बिल्कुल वैसा ही निकला कि पुजारी जी आए नहा धो करके, बड़े प्रसन्न, बड़े गदगद, और हाथ में जो भी भगवान को चढ़ाने की सामग्री थी, फूल वगैरह थे, वो सब हाथ में लिए नाचते हुए आए भगवान के सामने, फूल सूंघा, बहुत अच्छा, चढ़ा दिया भगवान को। जो भी फूल चढ़ाते वो पहले सूंघते फिर भगवान को चढ़ाते। कमेटी ने निर्णय ले लिया कि आदमी ठीक नहीं है, ऐसा आदमी ठीक जान ही नहीं पड़ता जो बंधे बंधाए परंपरागत ढंग से बिना किसी हृदय में भक्ति के हमारी पूजा की प्रक्रिया को पूरा कर दे, वो ठीक जान पड़ता है जो भक्ति से भरा हुआ हो और थोड़ी बहुत उस प्रक्रिया में रद्दो बदल कर दे, वो तो बाहर करने लायक मालूम पड़ता है। असल में बने बजाए पूजा के ढंग को हमने श्रेष्ठ माना है, भक्ति को श्रेष्ठ नहीं माना, ये ध्यान रखना। ये जितने हम लोग कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, हमारी भक्ति जितनी मैकेनाइज्ड हो गई है, उसकी तरफ इशारा है ये। उसको सामने भगवान दिख रहे हैं और हमें हमें तो अपनी प्रक्रिया दिख रही कि कैसी करो चाहिए, एक के बाद जो, के बाद जो। भगवान अगवान से कोई मतलब नहीं, देख लो हमारा सारा कंसंट्रेशन उस प्रक्रिया पर है, भगवान के स्वरूप की तरफ हमारा नहीं है ध्यान। देखो अच्छा, जब महाराज जी चौक में पहुंचते हो पूजा करते, उस समय सबरी पूजा भूल जाती, क्यों भूल जाना चाहिए, क्यों भूल जाती, क्योंकि सामने बैठे हुए हैं, वहां भाव ऐसे उमड़ते हैं कि शब्दों की मुश्किल पड़ती है, आते हैं तो मुंह में नहीं आते, भीतर तो है सब। अच्छे अच्छे लोगों की बिल्कुल माने आवाज निकलना मुश्किल होती जो कि रोज पूजा करते हो, क्योंकि वहां प्रेजेंस फील हो रही, प्रेजेंस। वहां तो महाराज सामने बैठे हैं, लेकिन वहां वहां तो मूर्ति धरी कौन देखने वाला है, वहां का भगवान भगवान, इतना फर्क है। मैं ये फर्क बताना चाह रहा हूं, ये विचार, अगर साक्षात वहां पर भगवान बैठे हैं तो हाथ पैर कांपेंगे एक क्षण को, या फिर थोड़ी देर में प्रसन्न चित्त आनंदित हो जाएंगे कि भगवान के दर्शन हो गए, अब कहीं कोई भय की बात नहीं है, चलो शुरू करो पूजा। और पुजारी जी से कहा गया कि आपको अब नौकरी से इस्तीफा दे दो, आपके बस की नहीं है पूजा उजा, ये ढंग है पूजा करने का, पहले खुद सूंघ ले फिर भगवान को चढ़ा दिए। तो पुजारी जी भी लोगों की दृष्टि में जरूर बुद्धू थे, लेकिन जो जवाब दिया कि नौकरी आप संभालो, हमें उसकी चिंता भी नहीं, मगर भक्ति तो हम संभाले हैं अपनी, नौकरी आप अपनी संभालो। और सुनो, हमारे घर में तो हमारी मां ने जब भी जो चीज हमें खिलाई से पहले खुद चखें, देखी कि ठीक है कि नहीं। और इतने बड़े भगवान पर हम फूल चढ़ाएं और उसमें सुगंध है कि नहीं, क्या पता, पहले देख लो, अगर सुगंध है तो चढ़ाएंगे, नहीं तो क्यों चढ़ाएंगे। तर्क नहीं है ये, तर्क नहीं है ये, भक्ति है ये, भाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करें, ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण से हमें क्या लेना चाहिए संदेश की, क्या सचमुच हमारी भक्ति में इतनी श्रद्धा, इतना भगवान को साक्षात जैसे हम देख रहे हो ऐसा भाव है क्या? अगर नहीं है तो वो इसमें जोड़ लेना चाहिए। चावल सामने चढ़ रहे हैं ये तो ठीक है, रोज चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, दीप धूप सब चढ़ाते हैं, अर्घ मिला के चढ़ाते हैं, थोड़ी बहुत कछु कमी हो जावे तो उसको सुधार लेते, सब दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन एक जो ये कमी रह जा रही है कि सामने भगवान दिख ही नहीं रहे, सामने तो मूर्ति दिख रही, ये क्या चीज है? अगर साक्षात भगवान और भगवान का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फिर भक्ति की क्रिया की जा रही है, उसके पीछे हमारा कोई भाव नहीं है। और बिना भाव के भक्ति वर्षों करते रहो वो मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। जब तक हमें उस मूर्ति में भगवान का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ेगा। अरहंते सुह भक्ति सम्मतम, अरंत भगवान में जो शुभ अनुराग रूप भक्ति है, सामने भगवान है ऐसा अंतरंग में अनुराग जब उमड़ता है, अत्यंत शुभ अनुराग उमड़ता है, तब जाकर के हमारी दृष्टि में भगवान का स्वरूप आना शुरू होता है। और फिर हम भगवान के साथ जब एक मेक हो जाते हैं तब वहां से शुरू होती है भक्ति। भक्ति भी छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर हम ऐसे दृष्टिकोण से भक्ति करें, एक और उदाहरण है शायद समझ में आ जाए। हम लोग इस चीज को बहुत धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। अभी ब्रह्मचारी जी गए थे आचार्य श्री के चरणों में, तो आचार्य श्री ने क्या कहा, कोई और लोग बैठे थे, ब्रह्मचारी जी भी बैठे थे, तो आचार्य श्री ने कहा कि अब तो पूजा विधान पंचकल्याणक सब भक्ति भाव से नहीं होते, पैसा के भाव से होने लगे। अब सब चीजों में खर्चा कितनो हुई है, वो बचत कितनी हुई है, इसका हिसाब रखा जाता है। हमारे भाव कितने विशुद्ध होंगे, हमें कितना धर्म मिलेगा, इसकी जरा भी चिंता किसी को नहीं। कम से कम ऑर्गेनाइजर को तो बिल्कुल नहीं होती, आयोजन करता उनको कोई इससे मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ इससे मतलब है कि इतना खर्चा किया मैंने और इतना बचा मंदिर के लिए। ऐसी भक्ति हम वर्षों करते रहे और कर भी रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि हम अपनी भक्ति में थोड़ा सा कुछ जोड़ें। क्या जोड़ें? यही कि जैसे भगवान हैं मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कैसा है उनका स्वरूप, और ऐसे ही जैसे भगवान मुझे सामने दिखाई पड़ रहे हैं ऐसा ही मेरा है आत्मा का स्वरूप। बस ये बात और जोड़ लो, बाकी तो सब कर ही रहे। बाकी तो हम ये थोड़ी कह रहे कि आप छोड़ दो बाकी करना, बाकी सब कर रहे इतना और उसके साथ में, लेकिन रटा हुआ नहीं, अंतरंग से ऐसा भाव आ जाए तो सारा जीवन परिवर्तित हो सके। क्या हुआ था, एक व्यक्ति को एक छोटे से गांव में लॉटरी खुल गई, बहुत लाखों रुपया की लॉटरी खुल गई। अब वो बिल्कुल बुद्धू था, तो लॉटरी आजकल चलती ना, वो एक तरह का गैम्बलिंग है, वो तरीका है सिर्फ एक जुआ खेलने का। तो अब क्या हुआ कि सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य, सारा गांव चकित कि ऐसे बुद्धू आदमी को जो कुछ नहीं समझता, क्या कैलकुलेशन किया होगा, ऐसा नंबर उसने लगाया, जाके पूछना चाहिए। तो पूछा उससे कि क्यों, ये जो 69 नंबर है, 69 नंबर तुम्हें सूझा कैसे, ये क्यों तुमने लगाया? अरे उसने कहा इसमें कौन सी बात है, क्या हुआ कि जिस दिन मैंने टिकट खरीदा उसके एक दिन पहले रात को मुझे एक सपना दिखा, और सपने में एक ड्रामा चल रहा था। उस ड्रामा में मैंने देखा कि सात सात लोगों की सात कतारें खड़ी हुई हैं। बस मैंने फौरन कैलकुलेशन किया कि 7 7 69, और बस लगा दिया मैंने नंबर। मैंने 7 7 की लाइनें 7 देखी और मैंने फौरन स्वप्न में ही कैलकुलेशन किया कि 7 7 69। ठहरो, 7 7 69, और मैंने 69 नंबर लगा दिया। अब लोग हंसे, कहले हम तो पहले ही समझ रहे थे कि बुद्धू है बिल्कुल। समझाया उसको कि सुनो, तुम्हें कुछ मालूम है गणित का हिसाब, 7 7 69 नहीं होते, 49 होते हैं। उसने मालूम क्या जवाब दिया, ओके सो यू बी द मैथमेटिशियन,
आप रहो गणितज्ञ पर लाटरी बाबा हमें खुली है। आप करो गणित, होंगे आपके यहां पर 7 सत्ते 49, हमारे यहां तो 69 हुए और हमने लगाया और खुली हमें है लाटरी। आप संभालो अपनी पूजा पाठ की प्रक्रिया, आप संभालो अपने तर्क, आप संभालो अपने द्रव्य की सामग्री कि ये चढ़ानी चाहिए ये नहीं चढ़ानी चाहिए, ऐसे 3 चावल चढ़ाना चाहिए कि ऐसे 9 चढ़ाना चाहिए कि ठौना में चढ़ाना चाहिए कि ठौना में न चढ़ाना चाहिए कि स्थापना करनी चाहिए कि न करनी चाहिए। आप करो विवाद, हमने तो पाले अपने भगवान और हम हैं उनके ध्यान में लीन और बाकी आप संभालो, ऐसा कभी आया मन में? नहीं, मन में तो यही आता कि पहले जी बातें नक्की कर लो, पहले जा नक्की कर लो कि भगवान के दर्शन करने के ये सब क्रियाएं करने। बस ये बहुत अपन लोगों के साथ आज के इस दौर में ये बहुत बड़ी मुश्किल है। ये तो एक उदाहरण है, वो सब हम लोगों पे घटित होता है। हम लोग भी इन छोटी छोटी सी चीजों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो भगवान दिखाई पड़ना चाहिए थे मूर्ति में वो तो हो गए गायब, और बाकी सब दिख रहा है कि उनने स्थापना कैसी करी और स्थापना करो कैसी चाहिए थी। दुनिया भर की चीज, वेदी कैसी बनी है, उस पर सुंदर है कि नहीं है, क्या चीज कहां पड़ी हुई है। नहीं भैया, ये सब चीजें तो हैं, रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर इसके साथ साथ जो मुख्य बात है वो गायब ना हो कि हमारे मन में भगवान के प्रति अत्यंत शुभ अनुराग उत्पन्न हो, हमें ऐसा एहसास हो कि जैसे हमने भगवान के दर्शन कर लिए, जैसे हमें भगवान साक्षात दिखाई पड़ गए और अब मैं भी जो है वापिस भले ही संसार में लौट रहा हूं दर्शन करके, लेकिन मैं भी ऐसा ही भगवान के जैसे स्वरूप को प्राप्त करके रहूंगा अपने जीवन में। मैं अपने स्वरूप के खिलाफ नहीं जाऊंगा, अपने स्वरूप के खिलाफ जाना अपने भगवान के खिलाफ जाना, कभी विचार किया इस चीज का? अपने भगवान के खिलाफ कोई जाना पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हम लोग अपने ही स्वभाव के खिलाफ जाते हैं। हमारा स्वभाव वीतरागता है और हम राग द्वेष में पड़ जाते हैं, भगवान को लेकर के राग द्वेष में पड़ जाते हैं, भगवान की पूजा की पद्धति और प्रक्रिया को लेकर के राग द्वेष में पड़ जाते हैं। ये हम अपने ही खिलाफ और भगवान के खिलाफ जा रहे हैं या कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं या भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये विचार हमें करना चाहिए। वादिराज महाराज ने ऐसी ही भक्ति की थी जिसमें कि उन्होंने अपने सामने साक्षात भगवान को देखा और उनसे बात की और उनके जीवन में आई हुई विपत्ति आसानी से दूर हो गई, सारे बंधन से वे मुक्त हो गए। क्या रोग का बंधन, क्या शरीर का बंधन, क्या कर्मों का बंधन, क्या संसार के और संबंधों के बंधन, सारे बंधन से हम एकमात्र भक्ति के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। और वादिराज महाराज ने भक्ति की, वो कैसी भक्ति की, मैंने आपसे कहा था कि उसके भाव पर अपन विचार करेंगे। 24-25 श्लोक हैं, लेकिन एक एक श्लोक में भक्ति का ऐसा स्वरूप भरा हुआ है। भक्तांबर तो प्रसिद्ध है, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक ही भाव स्तोत्र बहुत कम लोगों को उसका जानकारी ही नहीं है या उसमें क्या भाव है ये तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो अपन देखें कि क्या भाव है भक्ति के और वैसे भाव अपने भीतर आ सके। भले ही अपन से संस्कृत नहीं बने भैया, नहीं पढ़ पावे अपन या और अपने पास ज्ञान नहीं है ज्यादा, पर एक भाव दशा कैसी होनी चाहिए हमारे भीतर, कैसा हम फील करें, ये तो हम कम से कम जान ही सकते हैं, अपनी फीलिंग वैसी बना सकते हैं। एक ही भावम गति इव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव गतु दुर्निवारह करोति। भगवान के सामने जाकर के कह रहे हैं जैसे कि अपन ने बहुत दुख सहे हों और अपना कोई प्रियजन मिल जावे तो अपन क्या करते हैं, आंख में आंसू भर आते, वो कहते कि तुम्हें मालूम हमने कैसे कैसे दुख झेले, सुनाते कि नहीं सुनाते। बस यही स्टाइल है यहां पर भी, एकी भावम गति उमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारा करोति। भगवान आपसे हम क्या कहें, ये जो हमारी अज्ञानता से हमने कर्म बांधे हैं वे हमारे साथ इतने एकमेक हो गए हैं कि हमें अपने से भी पृथक जान ही नहीं पड़ते। ये शरीर हमें अपने से पृथक नहीं जान पड़ता है, ये कर्म जो हमारे साथ बंधे हैं वे भी हमारे साथ एक मेक पने को प्राप्त हो गए, और इतने ही नहीं भाव भाव में मुझे बहुत दुख देते हैं, इनको दूर करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं ये विश्वास लेकर के आपके पास आया हूं। क्या विश्वास लेके आया, आप मुझे कोई सांत्वना देंगे, आप मेरे कर्मों को काट देंगे? नहीं, ऐसा कोई विचार लेके आपके पास नहीं आया। ना आप मेरे कर्मों को काटेंगे, ना मुझे कर्मों को काटने की कोई सांत्वना चाहिए है किसी से। मैं तो सिर्फ इस विश्वास से भर के आया हूं कि यदि मेरे अंदर आपके स्वरूप के प्रति श्रद्धा है, आपके स्वरूप के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, भक्ति है, तो मेरे कर्म अपने आप कट जाएंगे। तस्याप्यस्य त्वयि जिन रवे भक्तिरुन्मुक्ते चेत जेतुम शक्यो भवति न तया को अपरा ताप हेतु। मैं तो इस विश्वास से आया हूं कि आपकी भक्ति से, हे जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य, आपकी भक्ति करने मात्र से, आपकी भक्ति मतलब आपके स्वरूप का स्मरण करने मात्र से, अगर अपन को अपनी वास्तविकता मालूम पड़ जावे कि अपना स्वभाव इतना आनंद का है, तो अपन कितो भी दुखी हो गए तो अपन को कैसा लगेगा कि अरे कछु नहीं, कोई बात नहीं, ये तो दुख तो बाहरी है, अपना स्वभाव तो बहुत आनंद का, बहुत सुख का है। ठीक ऐसा ही वहां पर भी, ये श्रद्धान इतना प्रगाढ़ हो गया, अपना श्रद्धान अभी कच्चा है। क्या हुआ था बादीराज महाराज के जीवन में, उनके शरीर में कुष्ठ हो गया था, शरीर में कुष्ठ हुआ था, लेकिन बादीराज महाराज स्वस्थ और आत्मस्थ थे, उनको कहीं कोई रोग नहीं था, उनकी देह में रोग था। जो देह को स्वयं मान लेवे वो कष्ट पावे, लेकिन जिसने देह को अपने से भिन्न माना है वो देह में होने वाले कष्ट से कोई प्रभावित नहीं होता। ये उनके साथ था, लेकिन जो सेठ जी विश्वास रखते थे मुनि जनों के प्रति, भगवान के प्रति, जिनेंद्र देव के प्रति, वहां दरबार में किसी ने कहा कि अरे इनके महाराज तो कोड़ी होते हैं, कोड़ी, वे तो यहीं संसार में दुख पा रहे हैं, वे क्या सुख का उपाय बताएंगे, वे तो अभी अपने शरीर के रोग से मुक्त नहीं हो पा रहे, वे क्या संसार से मुक्त होंगे। ऐसी बातें कहीं, तब सेठ जी ने इतने ही जवाब दिया कि हमारे महाराज तो इस तरह से नहीं होते जैसा आप कह रहे हैं, वे तो अत्यंत सुंदर होते हैं। देखो, अगर भीतर की सुंदरता दिखाई पड़े तो बाहर की कुरूपता भी कोई मायने नहीं रखती, और अगर बाहर से बहुत सुंदर भी हो और भीतर कुरूप हो गए तो बाहर की सुंदरता भी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन क्या करें, ऐसी दृष्टि हो तब तो, अपन को तो अभी इन दो आंखों से बाहर बाहर दिखता है, भीतर कहां दिखाई पड़ता। और उसने सेठ ने कहा कि हमारे तो महाराज अत्यंत सुंदर होते, क्योंकि उनकी आत्मा निर्मल है इसलिए वे सुंदर है, हम और नहीं जानते। अब जब आकर के बादीराज महाराज के पास देखा था उन्होंने, तो उनके शरीर में तो कुष्ठ रोग था, तो बड़े विचलित हुए सेठ जी, और महाराज से निवेदन किया कि महाराज हम तो वहां कह के आए हैं और राजा आएंगे कल सवेरे देखने के लिए, दर्शनों के लिए, और आपके शरीर में तो वाकई में कुष्ठ हो गया है, अब आप कुछ उपाय करो, धर्म की अप्रभावना ना हो जावे, बताइए। और तब बादीराज महाराज ने, भगवान की भक्ति तो हमेशा वे भक्ति में लीन रहते थे, तब उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र के माध्यम से भगवान की भक्ति की, और उसमें कह रहे हैं कि ये जो मेरे साथ कर्मों का बंधन एक मेक हो गया है और मुझे भाव भाव में दुख देता है, मैं पूरे विश्वास के साथ आपकी भक्ति शुरू करता हूं, मुझे विश्वास है कि इस भक्ति से मैं उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, फिर बाकी संसार के संताप वो तो अपने आप दूर हो जाएंगे। जब कर्मों का बंधन दूर हो जाएगा तो संताप दूर हो जाएंगे। मेरे असाता की वजह से शरीर में ये व्याधि हुई है, जब मेरे असाता ही नहीं रहेगी तो ये व्याधि और ये संताप अपने आप दूर हो जाएगा। भक्ति का ये ढंग है। हम अपने दुख दूर करने के लिए भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करते भक्ति में, हम तो अपने चित्त की निर्मलता के द्वारा अपने उन कर्मों को काट करके अपने दुखों से स्वयं दूर करने का उपाय भगवान के चरणों में आकर के शुरू करते हैं। इतनी ही भक्ति है। ज्योति रूपम दुरित निवाह ध्वांत विध्वंस हेतुम त्वामे वाहुर जिनवर चिरम तत्व विद्या वियुक्ता चेतो वाशे भवस्य चमम स्फार मुद्भास मानस तस्मिन नमः कतमिव तमो वस्तु तो वस्तु मिष्टे। फिर भक्ति करते हुए वादिराज महाराज कह रहे कि तत्व विद्या भी युक्ता आहु त्वामेव, तत्व के जानकार गणधर भी आपके लिए ज्योति स्वरूप कहते हैं। और वास्तव में जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है उसको भगवान ज्योति स्वरूप अर्थात केवल ज्ञान से युक्त दिखाई पड़ेंगे, वहां मूर्ति में बैठे हुए ऐसे ऐसे नहीं दिखाई पड़ेंगे जैसे अपन को दिखाई पड़ते हैं कि काले रंग का पाषाण है कि सफेद रंग का पाषाण है। वहां तो केवल ज्ञान की ज्योति स्वरूप दिखाई पड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि जितने भी तत्व के जानने वाले, जिनके भी तत्व को जानने की श्रद्धा पैदा हो गई है, आंख पैदा हो गई, जिनको दृष्टि पैदा हो गई है, वे सब आपको केवल ज्ञान रूपी ज्योति से युक्त मानते हैं। तामी बाहुर जिनवर चिरम तत्व विद्या भी युक्ता और चेतो वासे भवसिम चमम इस भार मुद्भास मानस तस्मिन नमः कतमिव तमो वस्तु तो वस्तु में इसके। और अब मैंने भी अपने श्रद्धा की आंख से आपको ज्योति स्वरूप देख लिया है और आप जैसा ही मेरा स्वरूप है सो आप मेरे अंदर आकर के बैठोगे, चेतो वासे मेरे मन में आप वास करोगे और आप स्वयं ज्योति स्वरूप हो, तो बताओ भगवान मेरे अंदर प्रकाशित होकर के क्या मेरे अंदर के अंधकार को अपने आप नष्ट नहीं कर दोगे? हो ही जाएगा। आप ज्योति स्वरूप हैं और आपको मैंने अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, अर्थात आपका जैसा स्वरूप है वैसा ही मेरा है, ऐसा मैंने श्रद्धान कर लिया है। और आप मेरे भीतर आके बैठे हों, प्रकाशित हों। भैया कमरे में अगर बिजली जले तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, किसी को उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही अगर भगवान हमारे अंदर हम महसूस करें, वैसी ही भगवत्ता का हमें एहसास हो जैसा भगवान के अंदर प्राप्त हुई है, अगर वैसी हमें होने लगे तो बताइएगा क्या कर्मों का अंधेरा या कि दुखों का अंधेरा हमारे भीतर शेष रहेगा? नहीं रहेगा। क्षण भर को सारे भक्ति के दौरान तो कम से कम सारे दुखों से, सारे संताप से और हम मुक्त हो ही जाते हैं। ऐसी यदि हमारे जीवन में और भक्ति हम करें तो भक्ति भी हमारी मुक्ति में कारण बन सकती, हमारे जीवन को निर्मल बना सकती है। इतने वर्षों हो गए अपन को भक्ति करते लेकिन अपना जीवन अभी भी राग द्वेष से मलिन है, क्या करें? अब हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि मैं रोज रोज भक्ति करूं और मेरी राग द्वेष की मलिनता हटती चली जाए, मुझे अपने भगवान जैसा वीतराग स्वरूप प्राप्त होता जाए तो मेरी भक्ति काम की है, नहीं तो कल मुझे फिर और जरा भक्ति को ढंग से करना पड़ेगा। अभी तो मेरे राग द्वेष की मलिनता जरा भी नहीं हटी, कल से आज में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। कल मैंने 2 घंटे पूजा करी थी, आज मेरा मन है कि मैं भले ही 1 घंटे करूं लेकिन ऐसी करूं कि जिससे राग द्वेष की मलिनता हट। बस यदि ऐसा भाव अपने मन में आ जाए तो भक्ति भी हमारे जीवन को और निर्मल बना सकती है। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह मग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग के नश्वर का शिव के निष्कंटक पद में विषकंटक बोता हो तुम तत्वों का चिंतन करते हो
करती तब शेर नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में
समतारस पान किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों
विद्यासागर जी महाराज के संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज श्री भव्य सागर जी महाराज के चरण कमलों की पूजा अनंत पद प्राप्त है हरगम निर्वपामिति स्वाहा।
मंत्र सुनते ही निकले नाग नागिन के प्राण मंत्र सुनते ही निकले नाग नागिन के प्राण इसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाओगे इसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाओगे
इसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाओगे इसको छोड़ोगे
पार होगा वही जब पे मंत्र नमोकार पार होगा वही जब पे मंत्र नमोकार इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाओगे, इसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाओगे,
इसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाओगे, इसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाओगे। इसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाओगे, इसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाओगे, इसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाओगे, इसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाओगे।
भक्ति का क्या कहना,
इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना।
दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्या सागर का क्या कहना, क्या कहना।
सागर के दीवाने और सारी दुनिया इनकी दीवानी। भक्तों के इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि सारे भक्त इनके दीवाने हो गए।
ये गुरु दीवाना क्या कहना, ये गुरु दीवाना क्या कहना, जग तेरा दीवाना क्या कहना।
ये गुरु दीवाना क्या कहना, जग तेरा दीवाना क्या कहना।
इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना।
इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना।
दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्या सागर का क्या कहना।
दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्या सागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्या सागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्या सागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्या सागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, सागर को मनाना आसान होता है। विद्या सागर को मनाना आसान होता है। ज्ञान सागर की जय मानो हर काम होता है। ज्ञान सागर की जय मानो हर काम होता है। विद्या सागर को मनाना आसान होता है।
ज्ञान सागर की जय बोलो हर काम होता है। ज्ञान सागर की जय बोलो हर काम होता है।
विद्या सागर को मनाना आसान होता है। विद्या सागर को मनाना आसान होता है।
चातुर्मास होता है।
वहाँ आनंद है जहाँ इनका चातुर्मास होता है।
ज्ञान सागर की जय बोलो हर काम होता है।
मन मंदिर में विद्यमान